Exato, exato. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اب ہم قرآن عظیم الشان کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفت القرآن سے اور شروع کی جو 6 آیات ہیں انہی کے معرف و مسائل پر ابھی ہم ہیں پیج نمبر 23 کے اوپر معرف القرآن جلد نمبر 5 سے اور پچھلی کلاس میں پچھلے ہفتے جو ہم موضوع پڑھ رہے تھے اس میں وہ تھا کہ خواب ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں ہے تو اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو جیسے ایک دو ساتھیوں نے بعد میں دریافت کری تھی تو پتہ چلا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو کلاس کے اندر تو پوچھ لیں یہاں پر چیٹ ونڈو میں سوال لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اس میں مسئلہ حضرت نے جو آخری بیان کیا تھا کہ خواب کی تعبیر خواب پر موقوف رہنے کا مطلب تفسیر مظہر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض تقدیری امور تقدیر مبرم یعنی قطعی نہیں ہوتے یعنی تقدیر کی دو شکلیں ہوتی ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں ہر تقدیر جو ہے نا وہ تقدیر مبرم یعنی فائنل تقدیر نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک تقدیر کی قسم تقدیر معلق بھی ہوتی ہے جو کہ چینج ہو جاتی ہے دعا سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے نیکی سے تبدیل ہو جاتی ہے برائی سے تبدیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ تقدیر مبرم ہے کہ تقدیر معلق ہے تو یہ جو ہے نا پھر سیاق و سباق سے ہی پتا چلے گا ٹھیک ہے کیا ریفرنس ٹو کانٹیکس ہے کس کانٹیکس کے اندر تقدیر کا نام تقدیر کا لفظ ذکر ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے نبی علیہ السلام السلام نے ایک جگہ جب فرمایا کہ تقدیر جو ہے وہ دعا سے یعنی کیا کہتے ہیں مصیبت دعا سے ٹل جاتی ہے وغیرہ تو اس طرح کی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو مصیبت کی بات ہو رہی ہے یہ تقدیر معلق کی بات ہو رہی ہے کیونکہ معلق والی ہی چیز جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہے یا آ جاتی ہے ٹھیک ہے مبرم والی جو چیز ہوتی ہے وہ نہیں ٹلتی وہ نہیں آتی وہ نہیں چینج ہوتی بہرحال تو اس پہ تو بات ہو چکی تھی پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ترمذی کی حدیث مذکور میں ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو عقل مند نہ ہو اور اس کا خیر خواہ و ہمدرد نہ ہو اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بری تعبیر سن کر انسان کے دل میں یہی خیال جمتا ہے کہ اب مجھ پر مصیبت آنے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بدگمانی اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا تو یہ بدگمانی اس کو لے ڈوبتی ہے اللہ سے بدگمانی ٹھیک ہے اللہ سے بدگمانی تو یہ تو فائنل نیل ان دا کافن ٹھیک ہے کیونکہ انا عند ظن عبدی بی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ہمیں بتا دیا کہ میں تو بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے کہ اس کا گمان ہوتا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے تو بدگمانی تو اللہ کے ساتھ ہو تو بالکل ختم معاملہ اور اگر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدگمانی ہو تو ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر مشائخ کے ساتھ اور اپنے اکابر علماء کے ساتھ بدگمانی ہو تو دین سے محروم ٹھیک ہے دین کے اوپر عمل کی توفیق سے محروم وغیرہ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں تو بدگمانی جو ہے وہ بری چیز ہوتی ہے لیکن بدگمانی بھی لائک ایوری ادر تھنگ بدگمانی کا مفہوم جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ ہر چیز ہی کو بدگمانی سمجھنا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی کافروں سے بدگمانی کہ وہ جہنم میں جائیں گے رائٹ یہ بھی تو کوئی سمجھ سکتا ہے نا کہ بھائی آپ کافروں سے کیوں بدگمان ہو رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے آپ اچھا گمان رکھیں کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے ہے بھائی خوشگمانی کرنی چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے کافر بھی جنت میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو خوشگمانی ہے یہ قرآن مجید کی نفی کر رہی ہے وحی کی نفی کر رہی ہے کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے اور آپ جو ہیں وہ خوشگمانی کے موڈ میں اتنا زیادہ آ گئے ہیں کہ کافروں کو بھی جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیویجول کافر کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلانا کافر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا کیونکہ موت سے پہلے تک وہ توبہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن کافروں کی جو جنس ہے جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں خوشگمان ہونا کہ جی وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو پھر قرآن مجید کی نفی ہو گئی، اور اگر قرآن مجید کی نفی کرنی ہے تو پھر کر لو جو کرنا ہے اس دنیا کے اندر، بعد میں پھر نپٹا جائے گا. اچھا آگے پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے جو یہ معلوم ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف و مصیبت کی نظر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے، روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت محض شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، شرعی حرام نہیں. ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے اندر کسی چیز کی ممانعت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ممانعت جو ہے یہ اس بات کو حرام کے درجے تک نہیں لے جا رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریفرنس ٹو کانٹیکس دیکھنا ہوتا ہے، دوسری حدیثوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اصول فقہ کو دیکھنا ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کی بنیاد پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ حرام کے درجے میں ہے، کہ یہ جو ہے وہ مکروہ کے درجے میں ہے، یا یہ جو ہے وہ بس احتیاط کے درجے میں ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کو ایسے ہی پڑھ کر کے ہم اس سے جو ہے نا وہ فائنل معنی اخذ کر لینا یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے، یہ اس کے لیے ایک علم کی گہرائی چاہیے ہوتی ہے. تو اس والی حدیث کے بارے میں جو کہ ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ ممانعت کی گئی ہے، تو بھئی یہ ممانعت جو ہے نا یہ شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، اس سے حرام ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اگر کسی سے بیان کر دے تو کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو اس وقت ہوتا ہے جب حرام کے مرتکب ہونے کا کوئی انسان مرتکب ہوتا ہے، تب گناہ ہوتا ہے. اچھا، کیونکہ احادیث صحیحہ میں ہی اب اس کی جو ہے وہ دلیل بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کیوں ایسی بات کر رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود غزوہ احد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اور دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت تھی، جو بڑا حادثہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرما دیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ پورے یعنی مجمع صحابہ کو اکٹھا کر کے یہ والا خواب بیان کیا، جو مجلس کے صحابہ تھے ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے خواب بیان کیا، یہ تو نہیں کہ پورے مجمع کو سنا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. لیکن اگر کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو پھر وہ ایون خصوصی مجلس کے اندر بھی جائز نہیں ہوتی نا، تو خصوصی مجلس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والا خواب جو کہ ایک برا خواب ہی تھا، یعنی برا خواب سے مراد جس کی تعبیر جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں جاری تھی، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حرام نہیں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام نہ فرماتے. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ، یعنی اس سے جو یعنی جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اندر کون سے فقہی مسائل یا روحانی مسائل اس میں سے نکل رہے ہیں، ان میں سے ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کو دوسرے کے شر، دوسرے سے یہاں پہ کون دوسرے مراد ہیں، یہاں پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی تھی؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی. ٹھیک ہے، تو ایک بیٹے کو دوسرے بیٹوں کے شر سے بچانے کے لیے یعقوب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں نا، تو یہاں پر آپ جو ہیں وہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے شر سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں کہ کسی کافر کے شر سے بچانے کے لیے مسلمان کی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، بلکہ دوسرے مسلمان کی بھی اگر نیت خراب ہو سکتی ہے یا اس کے اندر بھی کوئی انہیرنٹ خصلت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کا اظہار کر دینا جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے. مثلا کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس شخص کو باخبر کر دے، یہ غیبت حرام میں داخل نہیں ہے، یا یہ غیبت حرام میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ڈکشنری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ غیبت ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ غائبانہ طور پہ آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو لٹرلی اسپیکنگ تو یہ غیبت ہی میں آئے گا، لیکن شرعی اس اصطلاح کے اندر یہ غیبت میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے وہ خیر خواہی کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے شر سے بچانے کے لیے آپ یہ والا کام کر رہے ہیں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا कि भाइयों से उनकी जान का खतरा है। ठीक है, कि भाइयों से कि उनकी जान को खतरा है। ठीक है, तो अब ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि भाई किसी की बात जो है वो किसी से जा करके कर देना, ठीक है, तो अब ये एक इंसानी मुआशरे का एक लाजमी जुज है। ठीक है ना, या इन वन सेंस आप ये भी कह सकते हैं कि लाजमी जुज जो है ना ये था या बनता जा रहा, ये यानी माजी में जा रहा है, ये अब मुस्तकबिल में इंसानी मुआशरा जो है वो कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि जिसके अंदर अब ये उसका लाजमी जुज नहीं होगा। क्या ख्याल है, ऐसा हो रहा है इस वक्त? ठीक है, तो देखें इसके अंदर काफी सारी तफसील है कि जब इंसान आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है ना, और ये रहना जो है ना ये आपस में मिलजुल करके रहना होता है। ठीक है, मिलजुल करके रहना होता है कि भाई आप एक घर के अंदर रह रहे हैं या आप जो है वो एक सोसाइटी सोशल सेटअप के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, यानी एक घर के अंदर तो मियाँ बीवी बच्चों समेत MBBS, ठीक है, फिर उसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें तो इस घर के अंदर जो है वो दादा अब्बू भी हो सकते हैं। ठीक है ना, और पोते साहब पोती साहिबा और जो है वो नवासे साहब नवासी साहिबा, यानी दो जनरेशन इसके अंदर मजीद ऐड भी हो सकती हैं, तो ये जो है ना वो एक बड़ा बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाएगी। फिर जो है ना ये एक्सटेंडेड फैमिली मजीद बड़ी भी हो सकती है, जिसको कि एक शुबों व कबाइल कम्युनिटी कह सकते हैं, शुबों व कबाइल लितआरफू। ठीक है, कि हमने आपको जो है ना वो शुब और कबाइल में बनाया इंसानों को, तो कबीले की फॉर्म भी हो सकती है। ये कबीले की भी जो फॉर्म होती है ये भी कैसी होती है, बड़ी टाइटली इंटीग्रेटेड होती है, बड़ी टाइटली निट होती है। ठीक है ना, और ये कबीला जो है ये बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के ऊपर बना हुआ होता है। ठीक है ना, ये एक एक खानदान होता है जो कि बढ़ता 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 जो है वो कबीले का शक्ल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है ना वो लोगों का आपस में ऐसा मिलना जुलना होता है, ऐसी जान पहचान होती है कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ठीक है ना, क्योंकि वही इंसान है, इंसानों के दरमियान जो है वो ये कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सोसाइटी है, ठीक है, ह्यूमन सोशल सिस्टम है, ये ह्यूमन सोशल सिस्टम जो है ये एक और बेसिस पर भी हो सकता है, एक और बेसिस पर भी हो सकता है। वो भला क्या, एक तो बेसिस हो गया ना बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, नस्बी ताल्लुक, दूसरा बेसिस क्या हो सकता है इस तरह के सोसाइटी का, बिलीफ सिस्टम। ठीक है ना, बिलीफ सिस्टम, या आप उसको आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आइडियोलॉजिकल यानी दोनों के दरमियान जो है जो एक दूसरे से बिलीफ सिस्टम के अंदर एग्री करते हैं, ठीक है ना, सेम बिलीफ सिस्टम है, तो वो जो है ना फिर आपस में इस तरीके से एक सोशल सेटअप के अंदर रहना शुरू हो जाए, करीब करीब रहना शुरू हो जाए इस बुनियाद पर आकर के। ठीक है, तो अब जब वो इस बुनियाद पे आकर के आपस आस पास करीब करीब रहेंगे तो भी उनके दरमियान इंटरेक्शंस होंगी। ठीक है, और ये इंटरेक्शन जो है ना ये हर तरह की इंटरेक्शन होंगी, यानी एक बंदा दूसरे बंदे को तीसरे बंदे की अच्छाई बयान कर रहा है, ठीक है, एक बंदा दूसरे बंदे को तीसरे की यानी गीबत में गायबाना तौर पर अच्छाई बयान कर रहा है, और ये दूसरी शक्ल में भी हो सकती है कि एक बंदा दूसरे बंदे को तीसरे बंदे की गीबत में बुराई बयान कर रहा है। ठीक है ना, जिस तरह से खानदानी निजाम के अंदर होता है, ट्राइबल सिस्टम के अंदर होता है, अच्छाई भी एक दूसरे को बयान की जा रही होती है और बुराई भी एक दूसरे को बयान की जा रही होती है। ठीक है ना, फर्क इन दोनों के अंदर क्या है, ट्राइबल सिस्टम के अंदर और बिलीफ सिस्टम के अंदर, यानी जो बायोलॉजिकल सिस्टम था और ये जो बिलीफ सिस्टम की बुनियाद पर है, इनमें फर्क क्या है? इनके अंदर फर्क यही है कि जी आपकी कुछ ट्राइबल नॉर्म्स होती हैं, वहां पर ट्राइबल सिस्टम के अंदर कुछ ट्राइबल नॉर्म्स होती हैं, कुछ ट्राइबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको जो है ना वो ऊपर से जो ट्राइब का बड़ा होता है वो क्लियर कर रहा होता है, बता रहा होता है कि जी ये ट्राइबल नॉर्म्स हैं हमारी, आपने जो इंटरेक्शन करनी है ना वो इन ट्राइबल नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है ना, इनके खिलाफ अगर होगी ना तो हम जो है ना वो कोई किसी किस्म का जो है ना वो आपके खिलाफ क्या कह रहे हैं, पेन्यूटिव, तो क्या कौन से मेजर्स होते हैं वो, यानी कुछ आपको किसी किस्म की जो है ना वो सजा देंगे। ये सोशल बायकॉट की शक्ल में भी हो सकता है, ये जो है वो आपको चितरौल लगाने की शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है ना, ये आपको जो है वो कुछ और किस्म की सजा भी हो सकती है, और ये आपको जो है वो ट्राइब से एक्सपेल करने की शक्ल में भी हो सकता है, बाहर निकाल देने की शक्ल में भी हो सकता है। यानी अगर आपने ट्राइबल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो उसके ऊपर कोई ना कोई आपको सजा मिलेगी, क्योंकि ये एक सिस्टम है। क्या है ये एक सिस्टम है। उसी तरीके से बिलीफ की बुनियाद पर जो ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई है, तो वहां पर भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ प्री डिटर्मिंड जो है वो मामलात होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आप करेंगे तो अच्छा होगा, आपको आपकी तारीफ होगी और आपको अच्छा समझा जाएगा, और अगर आपने ऐसे ऐसे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो आपकी जो है वो बुराई होगी, ठीक है, आपको जो है वो अच्छा नहीं समझा जाएगा, और उसके ऊपर आपको किसी ना किसी शक्ल की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, किसी ना किसी शक्ल की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब हमारा दीन जो है ना वो क्या कहता है, हमारा दीन इसके अंदर कहाँ से, कहाँ उसकी इंटरफेरेंस या उसकी कहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है। हमारा दीन जो है ना, दीन इस्लाम, हमारे से मुराद इंसानों का, मेरा और आपका नहीं, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जिस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को दीन बना करके पेश किया, वो क्या कहता है कि अगर अच्छा मामला करोगे एक दूसरे के साथ तो तुम्हें दुनिया के अंदर भी हम इज्जत देंगे और आखिरत में भी तुम्हें इज्जत मिलेगी, और अगर तुम बुरा मामला करोगे तो तुम्हें आखिरत के अंदर सजा मिलेगी और मुमकिन है कि दुनिया के अंदर भी सजा मिल जाए, ठीक है, दुनिया के अंदर सजा जो है वो बेइज्जती की शक्ल में भी हो सकती है, दुनिया के अंदर सजा जो है वो हाथ काटने की शक्ल में भी हो सकती है, सर कलम करने की शक्ल में भी हो सकती है, पत्थर मारने की शक्ल में भी हो सकती है, या जो है वो और किस्म की कोई ताजीरी सजा, जिसको के जो बड़ा है आपके मुआशरे का, वो बड़ा जो है वो आपको एक्सपेल कर सकता है, ताजीरी सजा जिसको कहते हैं, कुछ भी कर सकता है इस तरह की, ठीक है। तो भाई ये जो है ना, ये ह्यूमन सोसाइटी का एक एक यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, या ह्यूमन सोसाइटी की लाइफलाइन है ये, ठीक है। आपस की कम्युनिकेशन अच्छी हो बुरी हो, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, ठीक है ना। अब जो है ना, दुनिया के अंदर जो एक मेजर तब्दीली, दज्जाली निजाम का नाम सुना होगा ना आपने, दज्जाली निजाम, राइट। तो दज्जाली निजाम के अंदर, ये जो दज्जाली निजाम इस वक्त दुनिया के अंदर जारी है, और इसकी इसके जो शिकंजे हैं वो कसते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो ये दज्जाली निजाम जो है वो ह्यूमन सोसाइटी का क्या क्या शक्ल पेश करता है, अगर आपने से कोई बताए, ठीक है। दज्जाली निजाम जो है ये ह्यूमन सोसाइटी की एक नई शक्ल पेश करता है, डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज शक्लें, ट्राइबल सिस्टम एज वेल एज बिलीफ बेस्ड सिस्टम, ठीक है, या आइडियोलॉजी बेस्ड सिस्टम, इसको हटा करके दजाली निजाम एक नई शक्ल पेश करता है। वो क्या शक्ल है जी? सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग। सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग बोलें या कुछ और, ये तो थिंकिंग ठीक है, आप करीब तो हैं लेकिन नॉट क्वाइट, मार्केट बेस्ड, हर क्लास जो होती है वो फाइनेंस की क्लास नहीं होती, मार्केट बेस्ड, चले ठीक है, ये भी मैं गलत नहीं कहूंगा इसको, और इंफ्रादियत क्लब भी गलत नहीं कह सकते, सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग को भी गलत नहीं कह सकते, ठीक है। इस वाले सिस्टम के अंदर जो है ना, ये ऐसी है कि ह्यूमन बीइंग्स की आपस में जो इंटरेक्शन है ना, ये कम से कम हो जाए, कम से कम, ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन है ना, ये सिर्फ बस एक तरह से ना बस मैकेनिकल हो जाए, मैकेनिकल, ठीक है, बड़ी क्या कहते हैं, रोबोटिक किस्म की हो जाए, सही है। और ये लोग जो है ना आपस में जो है वो जब मिले तो किसी को किसी की हकीकत का पता ना हो, किसी को किसी के ना अंदर का हालात का पता ना हो, बस ऊपर ऊपर से जैसे आप नजर आ रहे हैं वैसे बस अगले बंदे को आप नजर आए, ठीक है ना। जैसे कि पिछले 50-60 साल कम से कम आप कह लें, यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है, ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ डीलिंग विद ईच अदर, हाँ इस तरह भी कह सकते हैं। यूरोपियन अमेरिकन सोसाइटी जो होती है ना, वहां पे आप जाएं किसी वाइट अच्छे से गोरा गोरे वाले सबर्ब के अंदर जाएं, वाइट सबर्ब जिनको कहते हैं ना, ठीक है, तो वहां पर जाएं ना, तो हर बंदा जो है ना अपने घर के अंदर होगा, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, ठीक है ना, मतलब कभी वो बाहर निकलेगा बराबर वाले घर वाले से कहेगा हाय हाउ यू डूइंग, है ना, व्हाट्स व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट डिड यू डू ऑन संडे, इस तरह की एक दो चार बस ज्यादा से ज्यादा बातें करेगा, उसके बाद वो वापस अपने घर में चला जाएगा या गाड़ी में बैठ करके फिर वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है ना। पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं है कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, जब पता ही नहीं है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ना तो कोई अच्छी बात आपस में शेयर होगी, ना जो है वो कोई बुराई शेयर होगी आपस में, बस क्या चीज होगी कि ये ऑन फेस वैल्यू क्या चीज है, फेस वैल्यू, ठीक है ना। अब इससे एक एक नया वर्ड आपको याद आता है, फेस वैल्यू, गोरे साहब बाहर निकलते हैं तो अपने पड़ोसी के सामने फेस वैल्यू में ना बड़े अच्छे से, चाहे वो मुसलमान भी हो ना पड़ोसी, और उससे उसको देख करके उसको सख्त खार आ रही हो, लेकिन वो भी बहुत मीठे अंदाज में, बहुत प्यारे अंदाज में मुसलमान पड़ोसी से भी बात करेगा, ठीक है ना, दिल के जज्बात को बिल्कुल छुपा करके अच्छे चेहरे से बात करेगा, सही है। इसी चीज को जो है वो, जब से सोशल मीडिया आया है तो सोशल मीडिया ने इसी चीज को जो है ना सबसे पहला नाम क्या दिया, फेसबुक, ठीक है ना, फेसबुक। फेसबुक में क्या होता है, आपकी जाती जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, इट डज नॉट मैटर, आप इस फेसबुक के ऊपर अपनी वॉल के ऊपर कैसा लगाते हैं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, ठीक है ना, जैसा अपने आपको दिखाना चाहते हैं बस वैसा ही है, अंदर क्या हो रहा है अगले बंदे को नहीं पता, जब अगले बंदे को नहीं पता तो अंदर के हालात के बारे में वो ना तो कोई आपके बारे में अच्छी बात कर सकता है ना आपके बारे में बुरी बात कर सकता है, जो भी करेगा वो वही करेगा जैसे कि आप उसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है ना, ये ना ट्राइबल्स बेस्ड सिस्टम है, यानी इसमें ना जो है वो आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप्स इसकी बेसिस है, और ना आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप इसकी बेसिस, ये जो इस तरह से मामला हो ना, ये क्रिश्चियन नेबरहुड नहीं होता, ये नहीं है कि ये क्रिश्चियंस जो हैं ये इट्स लाइक समथिंग बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, या इट्स समथिंग बेस्ड ऑन जुडाइज्म, या इट्स समथिंग बेस्ड ऑन हिंदुइज्म, नहीं, इट्स समथिंग बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, जिसको कि हम दज्जाली निजाम कहते हैं रहने का, और यही जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से, और जैसे जैसे ये आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा तरक्की करती जा रही है, दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन, मोर एंड मोर वाइड स्प्रेड, ठीक है ना। अब ये वाला जो सिस्टम है, जाहिर है बढ़ते बढ़ते जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज के भी बड़े नेबरहुड्स के अंदर यही सिस्टम आ गया, अब जो है वो ईस्टर्न जो पूरा का पूरा ब्लॉक है दुनिया का, उसके अंदर छोटे छोटे शहरों के अंदर भी, हत्ता के अगर गांव के अंदर भी इंटरनेट पहुंच गया ना, तो शायद गांव के अंदर भी इसी किस्म का सिस्टम शुरू हो जाए चंद दिनों में पाकिस्तान के अंदर, अभी अलहमदुल्ला नहीं है, लेकिन वो भी वहां पर भी शुरू हो जाए, ट्राइबल सिस्टम खत्म, दीनी सिस्टम जो है वो तो वैसे ही बदामालियों की वजह से खत्म, ठीक है, तो यही सिस्टम है कि बस एवरी वन इज ऑन इज ओन, अपनी जिंदगी आप, ना किसी से कोई इंटरेक्शन, ना किसी को, अब भाई इंटरेक्शन होगी तो उसमें तो अच्छाई भी सामने आएगी बुराई भी सामने आएगी, ठीक है ना, लेकिन बुरा लगता है नहीं, मेरी बुराई किसी को क्यों पता चले, राइट, मेरी बात जो है वो किसी को क्यों पता चले, जैसे कहते हैं ना शेख साहब को क्यों बता दिया, घर की बात क्यों शेख साहब को बता दी, ठीक है ना, माशाल्लाह, है ना, अल्लाह आपको जजाए खैर दे और आपको जो है वो सही मानों में शेख से फायदा पहुंचाए, इस तरह की बात करते हैं, घर की बात शेख को क्यों बता दी, अल्लाह के बंदे शेख को तुमने, उसके लिए सजा भी मिलती है ना, और हमें उसका इदराक नहीं हो रहा होता कि हमें उसकी क्या सजाएं मिल रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो इस किस्म की जो है ना वो सोच जो है ये नफी करती है ट्राइबल सिस्टम की भी, और ये बिलीफ बेस्ड सिस्टम की भी नफी करती है, और यही जो है ना वो दज्जाल का फोकस है कि उसने दुनिया के अंदर यही सिस्टम लेकर के आना है, ठीक है। तो ये हमारा दीन जो है ना वो ना तो ट्राइबल सिस्टम के खिलाफ है, ना जो है वो बिलीफ बेस्ड सिस्टम के खिलाफ है, एज लॉन्ग एज कि ट्राइबल सिस्टम और बिलीफ बेस्ड सिस्टम के अंदर जो हमारी सोच हो ना वो आखिरत बेस्ड हो, आखिरत बेस्ड हो, ठीक है, खैरख्वाही बेस्ड हो, दुनिया की भी खैरख्वाही और आखिरत की भी खैरख्वाही, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, किसी की गीबत में उसकी अच्छाई करना, वो तो सारी दुनिया ही उसको कोई कोई उसको बुरा नहीं कहेगा, ठीक है ना, लेकिन किसी की गीबत में उसकी बुराई करना, ये भी बुरा नहीं है अगर वो आखिरत की रीजन से हो, या दुनिया की खैर ख्वाही की रीजन से हो, आखिरत की खैर ख्वाही की रीजन से हो, या दुनिया की खैर ख्वाही की रीजन से हो, ठीक है। लेकिन ये चीज किसको बुरी लगेगी, ये भी आप बता दें। ये किसको बुरी लगेगी कि कोई मेरे बारे में कोई किसी को बताए ना, किसी को पता ना चले, मेरी मेरे ऐप जो है ना वो उनके ऊपर जो है वो बात ना हो, ठीक है ना, बात ना हो, बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए मेरे ऐपों के बारे में, बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। डज नॉट मैटर कौन बात कर रहा है, बट होनी नहीं चाहिए मेरे ऐपों के बारे में बात। ये किसको बुरी लगेगी जी, किसको बुरी लगेगी ये बात, अपने नफ्स को बुरी लगेगी। अच्छा ठीक है, बहुत सस्ते छूट गए आप नफ्स का नाम लेकर के। नहीं, और बात बताएं कि किस किस्म के इंसान को बुरी लगेगी ये बात, समवन अनइंटरेस्टेड इन इस्लाह, ठीक है ना, समवन हु डज नॉट वॉन्ट इस्लाह। क्या मतलब कि उसको जो है ना वो आखिरत में जवाबदेही की फिक्र ना हो, उसको आखिरत की फिक्र ना हो, आखिरत की जवाबदेही उसके लिए मैटर ना करती हो, उसके लिए मैटर क्या करती हो, इस दुनिया की, इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया की जिल्लत, बस इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया की जिल्लत वो उसके लिए मैटर करती हो, आखिरत की इज्जत, आखिरत की जिल्लत उसको मैटर ना करती हो, ठीक है ना। जिसके लिए आखिरत की इज्जत और आखिरत की जिल्लत मैटर करती है ना, तो वो इन चीजों के बारे में इतना सेंसिटिव नहीं होता, थोड़ा बहुत तबीयी तौर पर, ह्यूमन नेचर के तौर पर थोड़ा बहुत हर कोई होता है। ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल आप रोबोट बन जाएं और बिल्कुल इससे जो है वो आपको कोई फर्क नहीं पड़े और आप, नहीं ऐसा नहीं है। तभी तौर पर किसी इंसान को अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती, तभी तौर पर हर इंसान को अपनी अच्छाई जो है वो अच्छी लग रही होती, तभी तौर पर। लेकिन भाई ये जो कुरान मजीद आया है ये खाली तबीयतों के लिए आया है, हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो सब कुछ जो है वो हमारी जो तबीयत को अच्छा लग रहा है, जो तबीयत को, बस इतना ही है, या कोई शरीय अहकाम भी है विच इज ऑन टॉप ऑफ द तबीयत, कि भाई तबीयत के खिलाफ आपने कुछ काम करने होते हैं उसके ऊपर आपको जजा मिल रही होती है, तबीयत के खिलाफ आप कुछ काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर आपको बड़े बड़े जो है वो इनामात मिल रहे होते हैं, इसी को तो कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी किस चीज का नाम है ना, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कुर्बानी। कुर्बानी जो है ना वो तबीयत के खिलाफ किसी काम करने को कुर्बानी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो सख्त बुरी लग रही होती है, सख्त जो है वो इसके अंदर जो है वो हमें तकलीफ हो रही होती है, ठीक है ना। हम ये नहीं देख रहे होते कि इसके अंदर हमारी दुनिया की भी भलाई हो रही है, और कितनी भलाई हो रही है वो हम भूल जाते हैं फौरन, हालांकि हमारे सामने, ऑन आवर फेस हमारे सामने इतनी सारी भलाइयां हैं, इतनी सारी बुराइयों से हम इस सिस्टम की वजह से बच रहे होते हैं, लेकिन तबीयत इतनी गालिब, इतनी गालिब, इतनी गालिब कि सारी जो हमें फायदे हो रहे होते हैं वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। और जो है ना ये बात कि मेरी बुराई कैसे हो गई, ये मेरी बुराई कैसे हो गई, ये हर चीज के ऊपर गालिब आ जाती है, ठीक है। और आखिरत की तरफ तो पता नहीं हमने क्या, जैसे कि दज्जाल का मंसूबा असल में क्या है कि जो लोग जो हैं, ये जो दज्जाली सिस्टम है ना ये हर जगह एक जैसा नहीं है, यानी एक तरीके से ये ऑपरेट नहीं करता, ये उन जगहों पे जहां पर के बिल्कुल गॉडलेस सोसाइटीज है ना, गॉडलेस सोसाइटीज, ठीक है, तो गॉडलेस सोसाइटीज में ये थोड़ा सा डिफरेंटली ऑपरेट करता है। वहां पे क्या करता है, बिल्कुल जो है ना वो अलग मामला, ठीक है, यानी क्या कहते हैं, हर बंदा जैसे अमेरिका के एक नेबरहुड के बारे में आपको बताया राइट, कि बस वो किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन जहां पर रिलीजियस नेबरहुड्स होंगी, रिलीजियस, ठीक है ना, जहां पर के किसी एक बिलीफ सिस्टम के समझने, किसी रिलीजन, बिलीफ सिस्टम का लफ्ज मैं यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता, रिलीजन, ठीक है, रिलीजन की बेस पर अगर कोई कम्युनिटी होगी ना, तो वहां पर भी वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, वहां पे ऐसे नहीं ऑपरेट करेगा कि बिल्कुल तुम लोग अलग अलग हो जाओ, क्योंकि भाई रिलीजियस सिस्टम जो है इट्स बेस्ड आउट ऑफ सम प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है ना। भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी होगी तो वहां पर जो है वो चर्च आपका जो है वो सेंटर होगा, ठीक है। जो बिल्कुल एथियस्टिक या गॉडलेस कम्युनिटी होगी वहां पर तो उनका कोई वो नहीं है ना, यानी कोई कोई सेंटर नहीं नहीं है ना वहां पर, वहां तो बस पब है, ठीक है ना। वहां पे जो है वो आप जाएं अपनी अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करें, आप जो है वो शराब पिए, मौसीकी सुने, उल्टी सीधे हरकतें करें, और उसके बाद आप वापस अपनी जिंदगी के अंदर आ जाएं, ठीक है ना। पब के अंदर जो है वो आप जो है वो आप लिए, ठीक है। तो गॉडलेस कम्युनिटी के अंदर इस किस्म की कोई सेंटर नहीं होता, लेकिन रिलीजियस कम्युनिटी में तो सेंटर होना जरूरी है, राइट। चर्च होगा, सिनेगॉग होगा, मंदिर होगा, या जो है वो मस्जिद होगी, ठीक है। तो अब ये जो है वो रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर फिर क्या करेगा, रिलीजियस कम्युनिटी में फिर ये अपना असर कैसे डालेगा, ठीक है। वहां पे ये कैसे डालेगा, वहां पे ये ऐसे डालता है कि रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर जो है ना ये उसको भी जो है वो सेक्युलराइज करने की कोशिश करता है, सेक्युलराइज रिलीजियस कम्युनिटी को भी ये सेक्युलराइज करने की कोशिश करता है। सेक्युलराइज करने का मतलब ये होता है कि दीन भी जो है ना वो दुनिया की खातिर, दीन भी दुनिया की खातिर, ठीक है, आखिरत की खातिर नहीं, अल्लाह की खातिर नहीं, बल्कि दुनियावी रख रखाव की खातिर। आम सी मिसाल इसकी सभी जानते हैं कि बेटा जो है ना वो दीन पर आ जाए ताकि जो है ना वो मेरे साथ बदतमीजी ना करे, बेटा दीन पर आ जाए ताकि मेरे साथ बदतमीजी ना करे, मेरे बुढ़ापे का जो है वो सहारा बन जाए, बेटी जो है वो दीन पर आ जाए ताकि जो है ना वो मेरे नाक कटने का सबब ना बन जाए, ठीक है ना, वो जो है वो औलाद ऐसी ना बन जाए कि जूता उठा करके मुझे मारनी शुरू हो जाए, इस वजह से वो मौलवियों के आसपास उठ के बैठेगी तो कम से कम जो है ना वो उसको इतनी तमीज आ जाएगी कि बाप के ऊपर जो है वो हाथ नहीं उठाए, माँ के सामने जो है वो बदतमीजी ना करे, ठीक है ना। तो ये भी तो एक रिलीजन है ना, लेकिन ये रिलीजन बेस्ड ऑन व्हाट, दुनिया, दुनिया के अंदर ऐसा मामला होता है, नॉट बेस्ड ऑन आखिरा, ठीक है ना, कि इसकी आखिरत संवर जाए, ये जहन्नुम के अजाब से बच जाए, ये नहीं, दुनिया का मसला हल हो जाए दुनिया के अंदर। अच्छा सूद के ऊपर कारोबार नहीं करेंगे, ठीक है ना, सूद के ऊपर कारोबार करने से जो है ना वो सूद बड़ा बढ़ जाता है और जो है वो अदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से है ना सूदी कारोबार की बजाय जो है वो इस्लामिक फाइनेंस करेंगे, ठीक है ना, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर जो ये वाली मुसीबतें नहीं होती, ठीक है। जुआ नहीं खेलेंगे क्योंकि जुए के अंदर जो है नुकसान बड़ा ज्यादा हो जाता है, इस वजह से जुआ नहीं खेल रहे, इसलिए नहीं कि अल्लाह का हुक्म था कि जुआ मत खेलो, राइट, और सूद जो है वो अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ जंग है, इस वजह से सूद से नहीं बच रहा, ठीक है ना। तो ये मंडेन, ये दीन को भी जो है ना वो क्या बना देता है, जहां पे दीनी कम्युनिटीज होती हैं जैसे पाकिस्तान, जैसे इंडिया के मुसलमान जो जो मुआशरा है, दीनी कम्युनिटीज है ना, यहाँ पे हम पिट्टू पिट्टू की तरह दीन दीन खेलते हैं, ठीक है, ये अमेरिकन कम्युनिटी नहीं है, यानी जो कि बिल्कुल नॉन क्रिश्चियन किस्म के अमेरिकन हैं, या ये कि फ्रांस नहीं है, ये फ्रांस जहाँ पे के देर इज नो यू नो गॉड इज नॉट अलाउड नाउजुबिल्लाह इन द पब्लिक डिस्कोर्स, ऐसी कम्युनिटी नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है ना। तो दीन ही है ना सारे के सारे, जैसे भी दीन हो, तो वहां पर जो है ना वो दीन को सेक्युलराइज करता है, उसके अंदर से अल्लाह का कनेक्शन निकालता है और उसके अंदर से आखिरत की फिक्र निकालता है, आखिरत में जवाबदेही का खौफ निकाल देता है। और फिर उसके बाद जो दीन बच जाता है वो दीन क्या होता है, अल्लामा इकबाल ने फरमाया बुत कदाए तसव्वुरात, बुत कदाए तसव्वुरात, ठीक है ना, ये फिर आपका दीन बाकी बच जाता है। मैसिंग अप विद द नियत, यस ऑफ कोर्स, नियत आखिरत का मामला जो नियत के साथ है, अल्लाह की रजा का मामला भी नियत के साथ है, ठीक है ना। आप काम तो वही कर रहे होते हैं, डूइंग द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस, डूइंग द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस, ठीक है ना, गलत नियत के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को जो है ना वो हमें जरा सोचने की जरूरत है, जैसे कि यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम का फेल है कि अपने ही बेटों की गीबत कर रहे हैं अपने दूसरे बेटे के सामने, ठीक है, क्यों भाई, ये एक खानदान है, ये एक 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 कम्युनिटी है, ठीक है ना, इसके अंदर ये चीजें हैं, लाजमी है, इनके बगैर कम्युनिटी हो नहीं सकती, या तो आप AI बेस्ड कम्युनिटी बना लें, मेटावर्स, राइट, ये क्या है, वर्चुअल कम्युनिटी है ना, मेटा, ये फेसबुक की जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है कि आप जो है वो वर्चुअल, अब आप जो है वो किसी शख्स को आप अपने जहन में एक तखयल बना लें कि मुझे एक ऐसा शख्स पसंद है, ठीक है ना, तो वो आपको एक उसकी एक AI परसोना बना करके दे देंगे, अब आप उसके साथ रहें, मजे में रहें माशाल्लाह उसके साथ, ना वो आपकी गीबत करेगा, ठीक है ना, और आप चाहेंगे अच्छाई करे तो वो अच्छाई करता रहेगा हर वक्त आपकी, ठीक है ना? तो यू योर सेल्फ एंड यू मी माई सेल्फ एंड आई, ठीक है ना? तो ऐसी जिंदगी इज क्वाइट पॉसिबल. अब जो है ना, ये दुनिया उसी तरफ जा रही है, काफी लोग पहुंच चुके हैं वहां तक और बाकी भी पहुंच जाएंगे उस रास्ते के ऊपर, ठीक है ना? लेकिन क्या बहैसियत है ईमान वाला मोमिन, जो कि अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के ऊपर ईमान रखता है, क्या हम अपने लिए वो वाला लाइफस्टाइल चाह रहे हैं जहां पे मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया था, चल के रहिए वहां जहां कोई ना हो. हाँ, आइए चल के रहिए वहां जहां कोई ना हो. और दूसरा मिसरा आपको याद होगा तो आप बता दिएगा, बीमार पड़ जाऊं तो दवादार कोई ना हो और मर जाऊं तो कोई नौहा ख्वा ना हो, जो भी है मिर्ज़ा गालिब का शेर, ठीक है? तो मिर्ज़ा गालिब ने जो है ना, वो 200 साल पहले इस वेस्टर्न कम्युनिटी को जो है ना, हालांकि वो तो कभी बरतानिया भी नहीं गए थे पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन और उस जमाने में बरतानिया का ही भी हाल नहीं था, ये तो अब वो है बरतानिया का हाल, लेकिन मिर्ज़ा गालिब के शेर के अंदर बड़ी जबरदस्त अक्कासी है इस वाले हाल की. तो इस एक पैराग्राफ से जो है वो हमें तो ये बातें समझ में आती हैं, बाकी आप अपनी समझ कुछ बताना चाहें तो बता दीजिएगा. मसला, अगला मसला, इसी आयत से ये भी मालूम हुआ कि जिस शख्स के मुतअल्लिक ये इहतमाल हो कि हमारी खुशहाली और नेमत का जिक्र सुनेगा तो उसको हसद होगा, ठीक है? अच्छा, मुझे याद आया अभी, क्योंकि अभी दो चार थोड़ा पहले ही किसी क्लास में ये बात आई थी तहज्जुद के बारे में, ठीक है, तहज्जुद के पढ़ने के बारे में. तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे हजरत के किसी बयान से पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उमर, राइट, अब्दुल्ला बिन उमर कितना अच्छा, नेमल अब्द, कितना अच्छा बंदा है, बस अगर ये तहज्जुद भी पढ़ा करता, बस अगर ये तहज्जुद भी पढ़ा करता, ठीक है? अब क्या हम इस अकीदे के हामिल हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब थे? क्या हम भी ये अकीदा रखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब थे, कि उनको जो है वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के तहज्जुद के बारे में पता था कि वो नहीं पढ़ते, या ये कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो घरों में झांक झांक के देखते थे रात को कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना? या पता नहीं, अब या कभी नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा देख लिया था तो उसके ऊपर नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला अब्दुल्ला बिन उमर से बदगुमान हो गया कि नहीं ये तो कभी भी नहीं पढ़ता, मैंने एक दफा उसको नहीं पढ़ते हुए देखा था तो ये कभी भी नहीं पढ़ता, या किसी ने आके शिकायत लगाई थी, शिकायत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है ना वो तहज्जुद नहीं पढ़ते, ठीक है? अब जो है ना वो शिकायत लगाना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन मजे की बात यह है कि आप हदीस मुबारक उठा करके देख लें, उस मुआशरे के अंदर रियासत मदीना मुनव्वरा जिसको कहा जाता है, रियासत मदीना भी जो है ना ये भी आजकल एक धोखा बन गया है, क्योंकि मदीना तो आप किसी भी शहर को कह सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो अरब का मदीना ही मुराद हो, ये नाम मशहूर हो गया है, लेकिन असल में तो मदीना तो नबी है ना, वो तो रियासत मदीना का मतलब पता नहीं कौन से मदीना की बात कर रहा है भाई, ठीक है? जहां पर के अपना कोई दीन होता हो, ये तो मदीना तो नबी है, तो रियासत मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है वहां पर तो इस तरह के, यानी हदीस मुबारक तो पिटी पड़ी हुई है इस तरह के वाकयात से. वो भाई जब इस मुआशरे के अंदर रह करके तुम्हें फायदे मिल रहे हैं तो साथ साथ एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, और डज इट नॉट, राइट? एवरीथिंग हैज अ प्राइस, वी डोंट वॉन्ट टू पे द प्राइस, वी जस्ट वॉन्ट द बेनिफिट्स, राइट? वी जस्ट वॉन्ट द बेनिफिट्स, वी डोंट वॉन्ट टू पे एनी प्राइस फॉर इट. और यहाँ पर हम प्राइस से मुराद यहाँ पे नोट नहीं है, नोट, हम पैसे नहीं देना चाहते, हम रकम नहीं पे करना चाहते, नो, राइट? प्राइस ये होती है कि जो आप चीज आपके नफ्स के ऊपर भारी हो रही हो, जो आपकी तबीयत के खिलाफ जा रही हो, इसको प्राइस कहते हैं, है ना? वॉलेट में से पैसे निकाल के देना, ये भी कुछ लोगों की तबीयत के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है, इस वजह से वो भी प्राइस कहलाती है, ठीक है ना? उसी तरीके से अपनी बुराई सुन लेना या अपनी बुराई जो है, अच्छा बदगुमानी करना, भाई बुराई आपकी हो भी नहीं रही थी, बुराई तो किसी और की हो रही थी, उसको मकसद जो है वो बात पहुंचाना मकसद था, ठीक है ना? अब आपके दिल में ऐसा चोर, या ये कि वाकई आप भी उस बुराई के अंदर मुबतला है, अगर वाकई आप भी उस बुराई में मुबतला हैं तो अल्लाह का एहसान क्यों नहीं मानते कि वो बुराई जो है वो मेरे सामने खुल गई, मैं उसकी इसलाह कर लूं, ताकि कयामत के दिन जो है वो मुझे उसके ऊपर कोई सदा ना पानी पड़ जाए, या दुनिया के अंदर मुझे उसकी वजह से कोई बुरी यानी रुसवाई का सामना ना पड़ जाए, अल्लाह ने मेरे सामने मेरी बुराई खोल दी तो अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं उसकी इसलाह कर लूंगा. लेकिन जहां पे इसलाह करनी ही ना हो,
यहाँ पे इसलाह के बारे में बिल्कुल यानी करना करने से जिद पकड़ लियो कि नहीं मैंने तो नहीं करनी अपनी इसलाह। अब जाहिर है वो जहां भी सुनेंगे कि मेरे वो यही समझेंगे मेरे बारे में बात हो रही थी, और फिर उसके बाद जो है वो फिर मेरे बारे में बात शुरू कर दी उन्होंने, फिर मेरे बारे में बात शुरू कर दी उन्होंने। अल्लाह के बंदे तुम ठीक क्यों नहीं हो जाते, तुम अपनी बुराई की इसलाह क्यों नहीं कर लेते? नेक्स्ट टाइम जब बुराई होगी तो फिर आपको आपके अंदर नहीं होगी वो बुराई, तो आपको जो है वो बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपकी वो बुराई की इसलाह हो चुकी है। लेकिन इसलाह भी नहीं करनी, अपनी आदतें छोड़नी भी नहीं है, तो अब जो है ना वो इसलाह करने वाला वही सारा का सारा मुजरिम कौन है? जो इसलाह कर रहे हैं वही सारा का सारा मुजरिम है, वही बुराई की जड़ है, राइट? तो हम फिर अपना एक नया निजाम बनाएं, या जो बना रहा है उसके साथ मिल जाएं, दज्जाल जिसको कहते हैं, हम उसके साथ मिल जाएं, उसका भी यही निजाम है, नो वन विल नो अबाउट एनी वन एल्स, कुछ ही को किसी का कुछ पता नहीं होगा, आप बिल्कुल जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हो, बिल्कुल अलग मिर्जा गालिब वाली वर्ल्ड, राइट? जहां वो रहना चाहते थे बेचारे रह ना सके, ठीक है, फिर करें जो करना है। सही है ना, जज़ाकुम अल्लाह, इन्होंने माशाल्लाह शेर भी लिख दिया इधर। रहिए अब ऐसी जगह चल कर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम जुबा कोई ना हो। अगला मिसरा इससे भी ज्यादा जबरदस्त है, वो वाला, बीमार पड़ जाए तो कोई, मर जाए तो नौहा खां कोई ना हो, ठीक है? तो अमेरिका में भी ऐसा होता है, वहां पे भी जाकर के बहुत सारे नेबरहुड ऐसा आपको मिल जाएंगे जहां पर हम सुखन कोई ना हो, हम जुबा कोई ना हो। अंग्रेजी बोलते होंगे आप, उर्दू बोलते होंगे, फिर बच्चे भी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, वो भी आपकी उर्दू समझने से इनकार कर देंगे और बोलने से इनकार कर देंगे। तो हम सुखन कोई ना हो, हम जुबा कोई ना हो, अल्लाह ताला बात की समझ नसीब फरमाए। मसला, अगर हमारे पास कुछ टाइम बाकी बच गया है तो, वैसे तो टाइम खत्म हो गया है, बस ये वाला पढ़ लें। तो फरमाते हैं कि इसी आयत से ये भी मालूम हुआ कि जिस शख्स के मुतालिक ये इहतमाल हो कि हमारी खुशहाली और नेमत का जिक्र सुनेगा तो उसको हसद होगा, और नुकसान पहुंचाने की फिक्र करेगा तो उसके सामने अपनी नेमत दौलत और इज्जत वगैरह का जिक्र ना करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने मकासद को कामयाब बनाने के लिए उनको राज में रखने से मदद हासिल करो, क्योंकि दुनिया में हर साहिब नेमत से हसद किया जाता है, ठीक है ना? और क्या बोले, कुछ ऐसे भी मुरीद होते हैं कि जिनके शेख उनसे हसद करते हैं। हमारे हजरत के एक बयान के अंदर हजरत ने वही फरमाया, वो ख्वाब वाला जो था, ठीक है, कि मुरीद साहब जो है ना, वो उनको ख्वाब में शैतान जन्नत दिखा रहा था, यानी बाग दिखा रहा था। तो मुरीद साहब जो है ना, वो अपने शेख से अपने ख्वाब ही नहीं बयान कर रहे थे कि भाई ये शेख साहब मुझसे हसद में मुब्तला हो जाएंगे कि मुझे तो ख्वाब में जन्नत दिखाई जा रही है, ठीक है? तो वो ख्वाब ही बयान नहीं करते थे अपने शेख के सामने, ठीक है? तो भाई यहाँ पर जो है ना, वो शेख मुराद नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर शेख आपने हासिद को बना लिया है तो अल्लाह ही आपके ऊपर रहम फरमाए, ठीक है? तो यहाँ पर मुराद ये है कि भाई आप जनरल अनाउंसमेंट मत क्या करते रहें दुनिया के सामने, जो है वो इस किस्म की बातें करना कि जी अब मेरा फलानी लॉटरी निकल आई, अब जो है मुझे मुझे इतना फायदा हो गया, और अब जो है वो मैंने नई फैक्ट्री भी खोल ली है, और अब मैंने जो है वो फलानी घड़ी खरीद ली है जो कि इतने 1000 रुपए की थी, और ये हो गया वो हो गया, है ना? नहीं। और प्लानिंग करना, यानी फ्यूचर के लिए अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ अहले मुआमला को बताएं जिनके साथ आपको मुआमला करना है, जिनके साथ आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है या प्रोजेक्ट मीटिंग करनी है उनको बताएं, या जो अहले मशवरा होते हैं जिनसे आपने मशवरा करना है, ठीक है, जिसके अंदर के दीनी दुनियावी मशवरा करने वाला जो होता है वो इंसान का शेख होता है, और उसके अलावा अगर कोई ऐसा बड़ा बड़ा हो कि जिससे आप जो है वो जिसको आप खैर ख्वाह समझते हैं और उससे आप बयान करें, ठीक है? लेकिन उसके अलावा लोगों से आप बयान ना करें, ठीक है? तो जहां भी नेमत होती है ना, फिर वहां पे हासिदीन जो है ना, वो उसी तरह से उगते हैं कि जैसे कि जब बारिश होती है ना, तो वो जो सांप की छतरियां उगती हैं ना, कहीं से वो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन एकदम से वो इतनी सारी पॉप अप कर जाती हैं, उसी तरीके से हासिदीन भी ऐसे ही पॉप अप कर जाते हैं, ठीक है? चले, और जादू वगैरह के बारे में लोग पूछते हैं तो हम नहीं, क्योंकि जादू बहुत है दुनिया के अंदर इसी वजह से, क्योंकि हासिदीन बहुत है, और हासिदीन जो है ना, फिर वो जब उनसे आसानी से फिर वो नुकसान ही पहुंचा पाते हैं तो फिर वो दे रिजोर्ट टू जादू एज वेल, ठीक
چلیں یہاں پر ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.